मिस्टर रायचंद इनाया के चेहरे की तरफ झुके और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके गले में मौजूद मंगलसूत्र को पकड़कर खींच दिया।
नहीं ई,
इनाया ने चीखते हुए उन्हें रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगलसूत्र मिस्टर रायचंद के हाथ में था और उसके मोती इनाया के आसपास बिखर गए थे। मिस्टर रायचंद ने इतना जोर लगाकर उस मंगलसूत्र को खींचा था कि उसके वजूद से अलग होते ही वो टूटकर बिखर गया था और इनाया की गर्दन पर दोनों तरफ गहरा जख्म छोड़ गया था जिससे खून रिसने लगा था।
आ,
इनाया के थरथराते होठों से दर्द भरी आह निकली। गुलाबी आंखों में नमकीन पानी तैर गया। बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रिश्ते पर? मुझे चैलेंज किया था तूने कि मैं तुझे कायरफ से दूर नहीं कर सकता, और मैं तुझे कायरफ की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक कर साबित कर दूंगा कि मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मेरे लिए तुझे कायरफ की जिंदगी से बाहर निकालना और उसे सिया से शादी करने के लिए मजबूर करना कोई मुश्किल काम नहीं। सारी प्लानिंग कर चुका हूं मैं, अब तू बस देखती जा मैं कैसे तुझे कायरफ की नजरों में गिराता हूं, कैसे विश्वास दिलाता हूं उसे कि तूने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और मतलब पूरा होते ही उसे छोड़कर अपने यार के साथ भाग गई। मेरे उस झूठ पर मोहर लगाएगा ये मंगलसूत्र। बहुत विश्वास है ना तुझे कि कायरफ तुझ पर शक नहीं करेगा? अब मैं भी देखता हूं कि वो कैसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मिस्टर रायचंद शातिर अंदाज में मुस्कुराए। इनाया डबडबाई आंखों से उनके हाथ में लटकते मंगलसूत्र को देख रही थी। बहुत जल्द वापस आऊंगा मैं तुझे अपने बेटे की सिया मल्होत्रा से शादी की गुड न्यूज़ सुनाने। तब तक तू और ये दोनों यहीं बंद रहेंगे। मैं तुझे कायरफ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। एक बार उसकी शादी सिया से हो जाए, उसके बाद मैं खुद तुझे इन लोगों के साथ यहाँ और कायरफ की जिंदगी से इतना दूर भेज दूंगा कि तू चाहकर भी कभी लौटकर उसकी जिंदगी में नहीं आ सकेगी। अंदाज घमंड से भरा था और वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, इनाया की हालत का मजाक उड़ा रहे थे। उनके बात सुनकर इनाया के होंठ के किनारे हल्के से मुड़ गए। आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं, लेकिन चेहरा सपाट था। बहुत खुश लग रहे हैं आप, लगता है अभी से अपनी जीत की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी सेलिब्रेशन ठीक नहीं है। क्या पता जो आपने सोचा है वैसे कुछ हो ही ना। इतना सब करके भी आपको कुछ भी हासिल ही ना हो। मुझे यहाँ बंद करके भी आप अपने मकसद को पूरा ना कर सके, क्योंकि जिस कायरफ को मैं जानती हूँ वो कभी इस झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। आप मुझे पाताल में भी छुपा कर रखेंगे तब भी वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच ही जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, कायरफ मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर मैंने सच में भी उसे धोखा दिया होता तब भी वो मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचेगा, कभी किसी और से शादी नहीं करेगा। यहाँ तो सब झूठ, फरेब और दिखावा है। इतना सब कुछ करके भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कायरफ कभी आपके झूठ में नहीं फंसेगा, कभी किसी कीमत पर उस सिया से शादी नहीं करेगा, कभी नहीं। कायरफ पर अब भी इनाया को अटूट विश्वास था, जिसे देखकर मिस्टर रायचंद बुरी तरह खींच गए। मैं भी देखता हूँ कायरफ कैसे सिया से शादी नहीं करता, नजर रखना इस पर। जब तक मैं ऑर्डर ना दूं ये यहाँ से कहीं जानी नहीं चाहिए। मिस्टर रायचंद ने उस गुंडे को इंस्ट्रक्शंस दिए और गुस्से में दनदनाते हुए वहां से चले गए। इनाया ने अपनी पलकों को झुकाया तो नजर गोद में पड़े उस लॉकेट पर पड़ी जो उसकी आई का था और टूटने पर कुछ टाइम पहले कायरव ने उसे ठीक करवाया था। मिस्टर रायचंद ने उसके मंगलसूत्र को इतनी जोर से खींचा कि उसके साथ साथ ये लॉकेट भी टूटकर उसकी गोद में आ गिरा। इनाया की नजर आसपास बिखरे उन छोटे छोटे मोतियों पर पड़ी और उसकी झुकी पलकों से आंसू की कुछ बूंदे झलकी जो उसकी गोद में पड़े उस लॉकेट को भिगो गई। इनाया को आज ऐसा लगा जैसे उससे उसका सब कुछ छिन गया हो। वो मंगल सूत्र जो कायरव ने उसे पहनाया था, जो उनके रिश्ते की निशानी थी, जिसे उसने कभी एक लम्हे के लिए भी अपने वजूद से अलग नहीं किया था, आज उससे छीन लिया गया था। उसके रिश्ते जैसे उसके मोती टूटकर बिखर गए थे। उसकी आई की आखिरी निशानी जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा, आज उसने भी जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी के दो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आज उसे खुद से दूर जाते नजर आ रहे थे। वो दुखी थी, बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और नम आंखों से वो उन बिखरे मोतियों और टूटे लॉकेट को देख रही थी। यहां हुए शोर का असर था कि मानव और अनीता जी को भी होश आ चुका था। पूरी नहीं, लेकिन इनाया और मिस्टर रायचंद के बीच हुई आखिरी की बातें वो भी सुन चुके थे और पूरी सिचुएशन समझ चुके थे। वो गुंडे भी मिस्टर रायचंद के पीछे पीछे वहां से निकल गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर वहां वही डरावना सन्नाटा पसरा था। उस छोटे से बल्ब की हल्की पीली रोशनी में इनाया का आंसुओं से भीगा चेहरा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले वहां एक तूफान सा आया था जो सब कुछ तबाह और बर्बाद करने के बाद वापस जा चुका था। अब वहां बस उस तबाही के निशान बचे थे। वहां एक बार फिर बस वही तीन लोग बचे थे। इनाया अपने दुख में इस कदर डूबी थी कि उसे खुद का ही होश नहीं था। उसके कानों में अजीब सी आवाज पड़ी, तब जाकर वो अपने सेंसेस में लौटी। अनायास ही निगाहें दाई तरफ घूमी, आवाज वहीं से आ रही थी। मानव और अनीता जी दोनों होश में आ चुके थे। ये देखकर इनाया जरा चौंक गई। अनीता जी नम आंखों से बेबस और लाचार सी उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ मानव था जो अपने हाथ पैर खोलने के लिए बुरी तरह झटपटा रहा था। मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह पर टेप होने की वजह से आवाज ठीक से बाहर नहीं आ रही थी। दोनों को होश में देखकर इनाया ने जल्दी ही खुद को संभाला। उसकी आंखों में अब भी आंसू भरे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा था और भीगी पलकें उठाए वो उन्हें देख रही थी। मैं ठीक हूं काकी, आप मेरी फिक्र मत करो। इनाया उनकी आंखों में अपने लिए चिंता देखकर फीका सा मुस्कुराई, फिर निगाहें मानव की तरफ घुमाते हुए बोली, मत कर कोशिश, बहुत टाइटली बांधा हुआ है। मैं सब ट्राई कर चुकी थी, हाथ पैर जख्मी हो गए लेकिन रस्सी से खुद को आजाद नहीं कर सकी। मानव के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, नजर इनाया की गर्दन से फिसल कर उसके हाथ पैर पर गई, वहां से भी खून रिस रहा था। मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले, इनाया एक बार फिर फीका सा मुस्कुराई, जैसे उन्हें अपने ठीक होने का विश्वास दिला रही हो। इनाया की आवाज का भारीपन उसके दिल का दर्द बयां कर रहा था। मानव और अनीता जी दोनों ही उसका दर्द समझ रहे थे लेकिन मजबूर थे, चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वो तो इस वक्त इस हालत में थे कि उसे सांत्वना तक नहीं दे सकते थे। इनाया किसी तरह पीछे खिसकी और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। सुनी निगाहों से उस बंद दरवाजे को घूरने लगी। लगा जैसे उसकी किस्मत ने भी इसी तरह उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है। रात बीत गई, तीनों की रात आंखों ही आंखों में कटी। वहां सन्नाटा पसरा रहा। मानव और अनीता जी परेशान से उसे देख रहे थे, वही इनाया शून्य में टक रही थी। न पलके झपक रही थी, न कुछ बोल रही थी और ना ही दोबारा उसने उन्हें देखा था। जाने क्या सोच रही थी कि चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। कुछ देर बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और तीनों ही थोड़े अलर्ट हो गए। बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। इनाया हराहट को गौर से सुन रही थी। अचानक गोडाउन का लोहे का पुराना गेट अजीब सी आवाज के साथ खुला। तेज रोशनी अंदर आई और इनाया की आंखें पल भर के लिए बंद हो गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और नजर सबसे पहले सामने गई, जहां वो गुंडा अपने चार पांच आदमियों के साथ खड़ा था। इनाया का चेहरा अब भी भावहीन था।
तुम्हारे बॉस ने हमें यहाँ कैद करके रखने कहा है, क्या उसके साथ ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि हमें भूखे प्यासे मार दिया जाए? इनाया ने तीखी निगाहों से घूरा। उस आदमी की भौहें ऊपर को तन गईं।